नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।